अदिति को गए हुए लगभग एक महीना हो चुका था। समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन का दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था। हालांकि अब एक फर्क जरूर आया था। वो पहले की तरह पूरे दिन कमरे में बंद नहीं रहता था, कभी कभी नीचे आ जाता, परिवार के साथ बैठ जाता, दो चार बातें भी कर लेता। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह शायद श्यामली थी। श्यामली ने कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला था। उसने कभी ये नहीं कहा कि अदिति को भूल जाओ, कभी ये नहीं कहा कि जिंदगी आगे बढ़ाओ। वो बस उसके साथ खड़ी रही। जब उसे रोना होता वो सुनती, जब उसे चुप रहना होता वो भी चुप रहती, जब उसे पुरानी बातें याद करनी होती वो बिना टोके सुनती रहती। धीरे धीरे आर्यन को उसकी आदत होने लगी। पहले वो किसी बात पर सबसे पहले अदिति को याद करता था। अब कई बार ऐसा होता कि कोई बात दिमाग में आते ही उसे लगता, ये बात श्यामली को बताऊंगा। और हर बार ये सोचकर वो खुद चौंक जाता। उसे ये एहसास अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके दिल में जो जगह अदिति की थी, वहां किसी और का होना गलत लगता था। लेकिन दिल तर्क नहीं समझता, दिल बस महसूस करता है। कई बार शाम को बरामदे में बैठकर जब वो श्यामली से बातें करता तो उसे वही सुकून मिलने लगता जो कभी अदिति के साथ मिलता था। वही शांति, वही अपनापन, वही एहसास कि सामने वाला बिना बोले भी उसकी बात समझ रहा है। और यही बात उसे डराने लगी। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में अदिति की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखते हुए धीमे से कहा, मुझे माफ कर देना। उसकी आंखें भर आईं। मैं तुम्हें भूल नहीं रहा, मैं कभी भूल भी नहीं सकता। लेकिन पता नहीं क्यों वो आगे नहीं बोल पाया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। क्या ये सिर्फ एक दोस्त पर भरोसा था या कुछ और? उसने तुरंत सिर झटक दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कमज़ोर पड़ गया हूँ, बस यही बात है। लेकिन जितना वो खुद को समझाता उतना ही दिल उसकी बात मानने से इनकार कर देता। अगले कुछ दिन भी इसी उधेड़बुन में बीते। वो श्यामली से दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन फिर खुद ही किसी बहाने उसके पास पहुँच जाता। कभी चाय पीने, कभी कोई पुरानी बात करने, कभी बस यूं ही। और हर बार लौटकर खुद पर नाराज़ हो जाता। उधर श्यामली को इन सब बातों का अंदाज़ा तक नहीं था। वो आज भी उसे उसी तरह देखती थी, एक दोस्त की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने बहुत कुछ खो दिया था और जिसे अभी सहारे की ज़रूरत थी। उस दिन शाम को एक बिजनेस पार्टी की तैयारी चल रही थी। शहर के कई बड़े लोग आने वाले थे। ब्लू थीम रखी गई थी, सभी को नीले रंग के कपड़े पहनने थे। विश्वनाथ अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने पहले ही अपनी नेवी ब्लू शर्ट निकाल ली थी। उधर आर्यन भी काफ़ी दिनों बाद किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास ब्लू थीम के हिसाब से कोई शर्ट नहीं थी। उसने अलमारी कई बार देखी, फिर हार कर बैठ गया। तभी विश्वनाथ की आवाज़ आई। उसने बात पता चली तो उसने बिना कुछ सोचे अपनी एक नई ब्लू शर्ट निकालकर श्यामली को दे दी। ये आर्यन को दे दो, शायद उस पर मुझसे ज़्यादा अच्छी लगे। विश्वनाथ मुस्कुरा दिया, श्यामली भी हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ मिनट बाद वो शर्ट लेकर आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर आर्यन आईने के सामने खड़ा था, ब्लैक पैंट और सफ़ेद टी शर्ट में। वो शायद तय नहीं कर पा रहा था कि पार्टी में जाए भी या नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मुड़कर देखा, श्यामली खड़ी थी, हाथ में एक पैकेट था। अंदर आ जाऊं? उसने पूछा। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। श्यामली अंदर आई और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। विश्वनाथ जी ने भेजी है, उनकी नई शर्ट है, कह रहे थे कि आज तुम पहन लो। आर्यन कुछ सेकंड तक पैकेट को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की मुस्कान आई। पापा भी ना, अभी भी मुझे बच्चा समझते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम बच्चे ही हो, श्यामली ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी समय श्यामली का हाथ भी उसी तरफ था। दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। बस एक पल, सिर्फ एक पल, लेकिन उस एक पल में आर्यन के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, सांस एक पल को अटक गई और वो अनायास श्यामली की तरफ देखने लगा। श्यामली ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उसे कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ था, वो सामान्य थी, पूरी तरह सामान्य। लेकिन आर्यन नहीं था। वो वहीं खड़ा रह गया, हाथ में शर्ट पकड़े, चेहरे पर अजीब सा भाव लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने पहले भी हजारों बार लोगों का हाथ छुआ था, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। श्यामली कुछ कह रही थी, शायद पार्टी के बारे में, शायद देर होने के बारे में, लेकिन आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक क्षण पर अटक गया था जब उनकी उंगलियां टकराई थीं। फिर अचानक उसे जैसे होश आया। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। दिल के भीतर अपराध बोध की एक लहर उठी। अदिति का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट सा गया। ये क्या सोच रहा हूं मैं, उसने मन ही मन खुद से कहा। मुझे क्या हो गया है? कमरे में खामोशी छा गई और आर्यन पहली बार अपने ही दिल से डर गया, क्योंकि अब तक वो अपने दर्द से लड़ रहा था, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि शायद उसके अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था और उसे ये नहीं पता था कि ये रास्ता आगे जाकर उसे कहां ले जाने वाला है। उधर शामली अभी भी पूरी तरह अनजान थी। उसे नहीं मालूम था कि आर्यन के दिल में कैसी उथल पुथल चल रही है। वो बस मुस्कुराते हुए बोली। शामली मुस्कुराते हुए बोली, इतना क्या सोच रहे हो, पहनकर तो देखो पहले। आर्यन ने शर्ट की तरफ देखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, पता नहीं मुझे कैसी लगेगी, पापा पर तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं। शामली ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब दिया, परेशान मत हो, ये तुम पर अच्छी लगेगी। फिर मजाकिया अंदाज में कंधे उचकाकर बोली, या कहूं उनसे भी ज्यादा तुम पर अच्छी लगेगी। वो ये बात बिल्कुल सहजता से कह गई। उसके लिए ये बस हौसला बढ़ाने वाली एक साधारण बात थी, लेकिन आर्यन के दिल पर उसका असर कुछ और ही हुआ। उसकी नजर अनायास शामली के चेहरे पर टिक गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो, जैसे कोई आज भी उसके बारे में पहले की तरह सोचता है, जैसे उसकी पसंद, उसका ध्यान, उसकी मौजूदगी अब भी किसी के लिए मायने रखती है। दिल के किसी कोने में एक गर्माहट सी धंस गई। उसे ये सोचकर बुरा लगना चाहिए था, शायद अपराध बोध भी होना चाहिए था, लेकिन सच ये था कि उस पल उसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा गई, क्योंकि शामली तो बस एक सामान्य बात कहकर मुस्कुरा रही थी, जबकि आर्यन उस मुस्कुरान में ऐसे अर्थ तलाशने लगा था जो शायद वहां थे ही नहीं। जल्दी आ जाना नीचे, शामली कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ गई और आर्यन उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके जाने के बाद उसने शर्ट को अपने सीने से लगाया और गहरी सांस ली, फिर धीरे से बुदबुदाया, मुझे आखिर हो क्या रहा है।